क्लास इंग्लिश में होगी लेकिन साथ में हिंदी में अनुवाद भी होगा, तो जो भक्त हिंदी समझते हैं उनके लिए अनुवाद की व्यवस्था है, तो दोनों साथ साथ होंगे, तो कृपया आप लोग सुन सकते हैं।
जय जो ब्रह्मण जय वास्या,
जय जो ब्रह्मण जय वास्या,
जय जो ब्रह्मण जय वास्या, वत्सल्यं विश्वं संस्तुतम्, वत्सल्यं विश्वं संस्तुतम्,
वत्सल्यं विश्वं संस्तुतम्,
पिता क्लीना दयास्तस्मै,
पिता क्लीना दयास्तस्मै,
प्रज्ञार्थेद्यां उपाश्यरे। Much louder please, more enthusiasm.
उत्साह से और जोर से।
तेतु ब्रह्मण देवस्या,
तेतु ब्रह्मण देवस्या,
वत्सल्यं विक्षे संस्तुतम्,
वत्सल्यं विक्षे संस्तुतम्,
पिताक्लिना दियास्तस्मै,
पिताक्लिना दियास्तस्मै,
प्रत्यर्प्येद्यं बबाशिरे। तेजो ब्रह्मण देवस्या,
तेजो ब्रह्मण देवस्या,
वत्सल्यं विक्षे संस्तुतम्,
वत्सल्यं विक्षे
संस्तुतम्, पिताक्लिना दियास्तस्मै,
पिताक्लिना
दियास्तस्मै, पद्यर्पेद्यादं बाशरे। तेजो ब्रह्मण देवस्या,
तेजो ब्रह्मण देवस्या,
वत्सल्यं विक्षे संस्तुतम्, पृथक्लीना दियास्तस्मै, प्रज्ञप्येदं बभाष्यरे। Next translation. All the brahmanas who were engaged in the various activities of the sacrifice were very pleased with Lord Ramachandra, who was greatly affectionate and favorable to the brahmanas.
अनुवाद। यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे।
Thus with melted hearts they returned all property received from him and spoke as follows.
अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले।
So you already read verse 3 and 4, no? What was the last verse you read? 1, okay. So this chapter is entitled, Lord Ramachandra Rules the World.
इस अध्याय का शीर्षक है, भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना।
Just to review, the first verse, Shukadeva Goswami is the speaker of Srimad Bhagavatam, as you know.
तो review करने के लिए, जैसा आप जानते हैं, श्रीशुक गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं।
So he is recalling the pastimes of Lord Sri Ramachandra.
तो वो भगवान रामचंद्र की लीलाओं का व्याख्यान कर रहे हैं।
He says, thereafter the supreme personality of Godhead, Lord Ramachandra, accepted an acharya and performed sacrifices, yajnas with opulent paraphernalia.
Shri Shukdev Goswami ne kaha, tatpashchat Bhagwan Ramchandra ne ek acharya swikar karke shreshth sat saman sahit badi dhoomdham se yajna sampann kiye.
Thus he himself worshipped himself for he is the supreme lord of all demigods.
Is tarah unhone swayam hi apni pooja ki kyunki vah sabhi devtaon ke parmeshwar hain.
We'll just review quickly. You see, this verse has an important, very important point. Lord Ramachandra is the Supreme Lord, yet he had accepted an acharya, which means he accepted a guru.
हम देखते हैं रामचंद्र स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी उन्होंने एक आचार्य को स्वीकार किया।
That doesn't mean that he just accepted a formal Hindu priest for the jagannas.
इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने मात्र औपचारिक रूप में किसी को अपना गुरु मान लिया।
Acharya never means Hindu priest.
आचार्य का अर्थ हिंदू समाज में तथा कथित जो
Acharya means pure Vaishnava.
कुल गुरु होते हैं वो नहीं है। आचार्य का अर्थ है शुद्ध वैष्णव.
So we see throughout the Shastra the Supreme Personality of Godhead accepts a guru.
तम शास्त्रों में देखते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान गुरु स्वीकार करते हैं.
Just like Lord Krishna Maharam, they accepted Sandipani Muni as their guru.
जिस प्रकार स्वयं कृष्ण बलराम ने संदीपनी मुनि को स्वीकार किया था.
The Lord is all knowledgeable, all cognizant.
भगवान सर्व ज्ञाता है, सबको जानते हैं.
So why does he need a guru?
तो उन्हें गुरु की क्या आवश्यकता?
Furthermore, he is the author of all the Vedas.
सारे वेद के उद्गम ही वही हैं.
So why should he require a guru?
तो उन्हें गुरु की क्यों जरूरत पड़ी?
It's not that he requires a guru, but he upholds the principles of dharma. That is, as the Supreme Lord, he upholds the principles of dharma.
तो ऐसा नहीं है कि उन्हें गुरु की आवश्यकता थी, परंतु वह धर्म के सारे सिद्धांतों को स्थापित करते हैं.
Principles of dharma is that the higher classes, at least the kshatriyas, they must accept brahmanas for guidance. So they must have guru. Kshatriyas must have guru.
तो शास्त्र कहते हैं सभ्य पुरुष को और विशेषकर उच्च श्रेणी के लोग को क्षत्रियों को ब्राह्मण को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए.
In Vedic culture, the function of the brahmanas in the court of the king was to be their advisor.
वैदिक सभ्यता में जो ब्राह्मण का कर्तव्य होता था राजाओं के महल में वो उनके सलाहकार के रूप में नियुक्त होते थे.
The classic example is Chanakya Pandit.
और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है चाणक्य पंडित का.
He was advisor Maharsh Chandragupta, wasn't it?
तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे.
Maharsh Chandragupta, he wouldn't do anything without consulting Chanakya Pandit. Wouldn't.
तो जो राजा चंद्रगुप्त थे वो बिना चाणक्य पंडित की राय लिए कुछ भी नहीं करते थे.
Especially military matters.
विशेषकर जो मिलिट्री से संबंधित चीजें.
In every aspect of administrating the state, he consulted Chanakya Pandit.
और राज्य के प्रबंध से संबंधित हर चीज वो चाणक्य पंडित से पूछकर करते.
This is ideal form of government.
तो ये एक आदर्श सरकार है.
So then we see what the role of the brahmanas is intended to be.
तो हम देखते हैं ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या होता है.
Not just performing puja, jagna, that's only part of the picture.
तो सिर्फ पूजा या यज्ञ करना ही उनका कर्तव्य नहीं है, ये तो पूरी पिक्चर का एक छोटा सा अंश है.
But along with that is advising the heads of state how to run the government.
परंतु उसके साथ साथ जो सरकार है या जो राज्य को नेतृत्व कर रहे हैं उनको सलाह देना.
What not to do.
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
When to do it, when not to do it.
कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए.
That's perfection of government.
तो ये एक सरकार का सिद्धि है.
So we're talking about Ram Raja, the kingdom of Lord Ram.
तो हम यहाँ पर राम राज्य की वे चर्चा कर रहे हैं भगवान राम के विषय में.
That means ideal government.
और वो सबसे उत्तम सरकार थी.
So Srila Prabhupada establishes Krishna consciousness movement to come to the point of being qualified to advise how to manage the whole world.
Srila Prabhupada ne Krishna Bhavanamrita andolan ki sthapna isliye ki taki hum is seema charam seema tak pahunche ki hum jitne bhi neta hain unko ye guidance de sake salah de sake ki kaise pure vishv par ko rajya karna hai.
In that sense, at the present time Prabhupada created the International Society for Krishna Consciousness and the GBC.
और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई, उसके अंदर GBC रहता है, गवर्निंग बॉडी का.
Created a system of responsible temple presidents.
और मंदिर अध्यक्ष का सिस्टम निर्मित किया गया.
And after Srila Prabhupada's departure, other management aides were brought in, such as regional secretaries, zonal secretaries, etc.
और Srila Prabhupada के अप्रकट होने के बाद अन्य कई पदवी निर्मित की गई इस संस्था को चलाने के लिए.
You could say, so our governing our International Society of Krishna Consciousness, you could say, is an exercise in practice.
तो आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो प्रबंधन है वो एक तरह से अभ्यास है इस बड़े लक्ष्य के लिए.
When the devotees of the Lord perfect managing our own society, then Krishna will give more. This is the principle.
तो सिद्धांत ये है कि जब हमारे भक्त अभ्यस्त हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे कि इस संस्था को कैसे अच्छे से प्रबंध करना है, तब भगवान कृष्ण और देंगे.
The more Krishna sees that we manage what he is giving nicely, the more he will give.
जब भगवान कृष्ण देखेंगे जो उन्होंने दिया है अगर उसका अच्छे से देख रेख कर रहे हैं तो वो और देते हैं.
If we mismanage, he may even take away.
और अगर हम उसकी देख रेख ठीक ढंग से नहीं करते तो वो वापस भी ले सकते.
So there must be acharya, and our movement, Prabhupada wanted to create Brahmins.
तो निश्चित रूप से आचार्य होने चाहिए आंदोलन में और इसलिए शिला प्रभुपाद का उद्देश्य था ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े.
Kshatriyas, that he wanted that our society should develop Kshatriyas also.
वो हमारे संस्था में क्षत्रिया विकसित करना भी चाहते थे शिला प्रभुपाद.
That might be another 50 years from now.
आने वाले 50 सालों में हम देखेंगे.
Because the devotees have to be ethically and morally and dharmically completely clean before they can take the role of kshatriya.
क्षत्रिया की भूमिका निभाने के लिए उनको नैतिकता स्तर पर और पूरा शुद्ध होना चाहिए अंदर और बाहर.
So Devi Varnashram is Krishna conscious organization of society.
Devi Varnashram का अर्थ है कृष्ण भावनामृत समाज.
Kshatriyas are supposed to be Rajarshi.
क्षत्रियों को राजर्षि होना चाहिए.
Rajarshi means saintly kings, saintly administrators.
राजर्षि का अर्थ है ऐसे राजा जो संत भी हैं.
And they are advised by the brahmanas.
और वो ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं.
Who know the rules of dharma in every respect.
जो धर्म के सारे सिद्धांतों को जानते हैं.
So our society is doing nicely by the Bhakti Vaibhavi programs, the studying of the Shastra, certification. Prabhupada wanted all of these things.
तो हम देखते हैं कि हमारे संस्था में भी भक्ति वैभव जैसे कोर्स हैं और शिला प्रभुपाद चाहते थे कि इस प्रकार के शास्त्रों पर आधारित कोर्सेज विकसित किए जाएं.
I shouldn't say just in the past sense. Siddha Prabhupada wants these things. In the present tense, also Prabhupada is not dead, he's not gone. Simply, he's acting from the spiritual world without a material body.
तो मुझे भूतकाल में नहीं कहना चाहिए कि शिला प्रभुपाद की इच्छा है वर्तमान काल में भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद अप्रकट हैं, वो आध्यात्मिक स्तर से कार्य कर रहे हैं.
So we have to develop this ideal brahmanical behavior.
तो हमें जो ब्राह्मण का क्या व्यवहार होता है इसको विकसित करना चाहिए.
Not all the devotees are going to be pure brahmanas. We see that just on a micro scale.
हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे व्यक्ति, सारे सारे भक्त शुद्ध ब्राह्मण बनेंगे.
Being a brahmana doesn't mean, okay, I've been initiated for 5 years. Give me a thread.
ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि ठीक है, मेरे को दीक्षा लिए हुए 5 साल हो गए, तो मेरे को जनेऊ दे दीजिए.
No, because somebody might be actually somewhat like a sudra without being able to teach Krishna consciousness, without being able to do deity worship. That if after 5 years or so, if that's the best they can do, they're not fit to take second initiation. No way.
तो अगर कोई शूद्र प्रवृत्ति का है और उसके चेतना में कोई अंतर नहीं आ रहा, विकास नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण बनने के या अर्च वगैरह पूजा करने के योग्य बन जाए.
You have to be able to do some deity worship. You don't have to be like our pujaris trained in Mayapur. You don't have to be that good, but at least some deity worship. And certainly have to know how to teach Krishna consciousness. The brahmanas were the teachers of society.
जैसे कि मायापुर में हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर डीटी वर्शिप सिखाया जाता है, तो कुछ ना कुछ डीटी वर्शिप करना चाहिए.
There were no universities in those days.
और ब्राह्मण सबको ये सिखाते हैं. पुराने समय में कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे.
Strictly modern invention.
ये आधुनिक निर्माण है.
The brahmanas taught everyone in every respect.
ब्राह्मण ही शिक्षक हुआ करते थे और सब कुछ सिखाते थे.
That's demonstrated perfectly in the Krishna book when Krishna Balaram learned everything from Sanabani. They learned everything, just, you know, material science, spiritual science, management, everything. The Brahmanas knew all these things.
और ये कृष्ण पुस्तक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण बलराम ने ऐसा नहीं कि भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या हर प्रकार के जो विषय हैं वो संदीपनी मुनि से सीखे
so that's Srila Prabhupada's expectation.
और यही शिला प्रभुपाद की इच्छा है
yet by 1975 in Chicago Illinois a central United States one of the largest cities in the United States
1975 में शिकागो के अंदर
Prabhupada was talking with the chief of police.
Srila Prabhupada वहाँ के जो पुलिस अध्यक्ष हैं उनसे वार्तालाप कर रहे थे.
He said, "Give us a building."
उन्होंने कहा कि हमें एक बिल्डिंग दीजिए.
We already had a large building, but Prabhupada was ambitious. He wanted a university-sized building.
तो हमारे पास उस समय ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी परंतु श्रीला प्रभुपाद का लक्ष्य बहुत ऊंचा था वो चाहते थे यूनिवर्सिटी साइज बिल्डिंग हमें दी जाए
He had been reading and there was Time magazine was a major magazine in those days
और उस समय श्रीला प्रभुपाद टाइम्स मैगजीन पढ़ रहे थे जो बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन थी विशेषकर उस समय
one month it had on the cover the cover had no photo no picture just black cover and in red letters it said crime why and what to do
और उसके जो फ्रंट कवर है उस पर कोई चित्र नहीं बना था एक महीने सिर्फ बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से लिखा हुआ था अपराध क्यों और कैसे क्राइम व्हाट एंड
Somebody showed the magazine to Srila Prabhupada and so he really jumped on it
तो जब श्रीला प्रभुपाद ने इस मैगजीन को पढ़ा तो उन्होंने उस पॉइंट को पकड़ लिया
That was his theme in class for several days, and when he spoke to the police chief, that was his theme.
और अपनी कक्षाओं में बार-बार उन्होंने इस बात पर बल दिया, और जब पुलिस चीफ से भी मिले, तो उन्होंने इस बात पर बल दिया।
Also in class, Prabhupada declared, "At least we have created third-class men."
और कक्षा देते हुए उन्होंने ये घोषणा की, हमने कम से कम तीसरी श्रेणी के लोगों को बनाया है।
He knew that not everyone could become a Brahmin. You see, that's practical. Not everyone can come up to the standard of being a Brahmin. Socham, for example, cleanliness.
वो जानते थे कि हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता. जैसे एक उदाहरण के लिए शौचम, स्वच्छता.
If somebody lives like a slob, dirty, I mean, maybe they bathe every day. That's fine. But if the ashram they live in is not clean, it's not Brahminical. Sorry.
तो अगर जो व्यक्ति रहता है अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखता. हो सकता है वो रोज स्नान कर रहा हो परंतु अगर
the same thing you know if you go into somebody's home if the place is a complete mess you go into the bedroom you see clothing thrown everywhere and whatever and then that person is not fit for second initiation there's no way
अगर आप किसी के घर जाते हैं किसी के कमरे में देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है कोई साफ सफाई नहीं है तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मण दीक्षा के योग्य नहीं है
The sinfulness of tamagun brahmanas are not supposed to be under tamagun it's supposed to be only under sattva
क्योंकि जो गंदगी है वो तमोगुण का लक्षण है और जो ब्राह्मण है वो सतोगुण में स्थित होते हैं
सो brahmanas kshatriyas vaishyas सो the vaishya class will come up automatically just like oil will automatically rise to the top of water
जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विशेषकर जो वैश्य है वह स्वतः ही आपको लोग दिखेंगे जैसे कि तेल ऊपर आ जाता है पानी में मिलाने से अपने आप
So we see that there are some devotees who are not first class brahmins but they're business people and they like to do business and they're mercantile whatever nowadays computer science and all these things this is of the vaishya nature
तो हम देखते हैं कि कुछ भक्त जो जिन्हें बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है
गोविंदा स्मॉल वर्म यू वुड हैव ए होम बट डोंट पुट एनीवेयर नियर तुलसी दोस वर्म्स दे ईट होल्स इन तुलसी
तो जो छोटा सा कीड़ा था तो महाराज कह रहे हैं कि इसको तुलसी के करीब मत रखिएगा वो तुलसी को खा जाते हैं कुत्ते
सो लॉर्ड रामचंद्र वर्शिप हिमसेल्फ And in Krishna book we see that in his palace in the morning
तो भगवान रामचंद्र ने स्वयं अपनी पूजा की और हम कृष्ण पुस्तक में भी देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण ध्यान लगाते थे सुबह ये कृष्ण पुस्तक में इसका विवरण आता है कृष्ण अपनी भार्या रुक्मिणी के साथ बेड में लेटे होते थे कृष्ण ब्रह्मचारी नहीं थे
So he's lying in the bed with his wife.
तो अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे.
And the rooster would go off.
और सुबह जो मुर्गा है वो बांग देता था.
Translate. Rukmini strongly disliked the rooster.
और रुक्मिणी को उस मुर्गे की जो आवाज होती थी सुबह सुबह जो करता था उससे बहुत ही नापसंद थी.
Because she knew as soon as the rooster went off, Krishna would get up.
क्योंकि उन्हें पता था इस आवाज़ को सुनके कृष्ण उठ जाएंगे.
It's very interesting.
बहुत रुचिकर है.
Of course, there's not much roosters outside of cages in the city of Delhi.
तो हम अभी शहर में तो नहीं देखते कि हमारे घर के बाहर कोई मुर्गा बांग दे रहा हो.
In the countryside, there are a lot of roosters.
परंतु अगर आप countryside जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मुर्गे.
When does the rooster first go off?
तो कब वो बांग देता है समय?
Before Brahma Muhurta.
ब्रह्मा मुहूर्त से पहले.
So, before the age of electronics and wind-up clocks and all that, roosters with alarm clocks.
तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आने से पहले जो मुर्गे होते थे वो अलार्म क्लॉक का कार्य करते थे.
Very practical system.
बहुत ही व्यवहारिक प्रबंध है प्रकृति के द्वारा.
So, Krishna would get up.
तो कृष्ण उठते थे
take his bath and all that, a few rituals.
स्नान करते थे
and then what would he do?
और उसके बाद क्या करते थे
he would sit down and he would worship himself.
वो बैठकर स्वयं अपनी पूजा करते थे
same as you described here. Yes.
जैसा कि यहाँ पर
read the Krishna book. Don't take my word for it. Read the Krishna book.
तो आप कृष्ण पुस्तक पढ़िए उसमें सब विवरण है
try to understand you know
समझने का प्रयास कीजिए
If you sit in front of a mirror and worship yourself, you'll know that you're really puffed up.
अगर आप उठके स्वयं अपनी पूजा कर रहे हैं, तो आप बहुत ही घमंडी
हैं। Krishna is God.
परंतु कृष्ण स्वयं भगवान हैं।
In Mathura, Krishna and Balaram were single-handedly fighting off whole huge armies, Kaliyavan and another demon. They were no army. They were just with their own arrows. They were shooting them off.
तो मथुरा के अंदर कृष्ण बलराम काल्यवन की पूरी सेना के साथ अकेले युद्ध कर रहे थे और एक तरफ जरासंध था
so they were killing tens of thousands of demons.
तो हजारों हजारों असुरों का वो नाश कर रहे थे
Just Krishna and Balaram with their bows and arrows.
अपने धनुष और तीरों से
Can you do that?
क्या आप कर सकते हो
No.
नहीं
Can you lift a mountain on one baby finger?
क्या आप कोई पर्वत को अपने एक उंगली
से उठा सकते हैं। So therefore, Krishna can sit down and he can meditate on himself. Now do you understand?
तो कृष्ण और बैठकर स्वयं अपने पे ध्यान लगा सकते हैं।
So Lord Ramachandra was doing the same thing.
भगवान रामचंद्र भी यही कर रहे थे।
Prabhupada doesn't stay here whether he is working, worshipping himself as Lord Ram or as worshipping Lord Vishnu.
तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद इस बात का उल्लेख नहीं करते कि वो बैठकर स्वयं भगवान राम के रूप में आराधना कर रहे हैं या भगवान विष्णु
के रूप में। Again, he is demonstrating the principles of pure dharma. What everyone must do, that's Ramaraja.
शिला प्रभुपाद धर्म के शुद्ध जो सिद्धांत है उस पर बल दे रहे हैं कि हम सबको क्या करना है।
So the second verse. Lord Ramachandra gave the entire east to the Hota priest.
श्लोक संख्या दो
सेकंड वर्स
भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को संपूर्ण पूर्व दिशा
the entire south of the Brahma, to the Brahmana priest,
ब्रह्मा पुरोहित को संपूर्ण दक्षिण दिशा
the west to the Advarya priest,
अद्वर्यो पुरोहित को पश्चिम दिशा
and the north to the Udgara priest,
और सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी।
The reciter of the Samaveda.
सामवेद के गायक।
In this way he donated his kingdom.
इस प्रकार उन्होंने अपना सारा साम्राज्य दे डाला।
Text 3.
Shlok Sankhya 3.
Thereafter, thinking that because the Brahmanas have no material desires,
Tat paschat ye soch kar ki Brahman log nishkam hote hain,
they should possess the entire world.
Atayev unhe hi sare jagat ka swami hona chahiye.
Lord Ramachandra delivered the land between the east and the north, west and the south to the Acharya.
Bhagwan Ramchandra ne purv, paschim, uttar tatha dakshin ke beech ki bhoomi Acharya ko de di.
This is his Guru Dakshin.
To ye unki Guru Dakshina thi.
His emperor, but he's giving away huge portions of his empire. As Guru Dakshin.
तो वो राजा थे और अपने साम्राज्य के सारा भाग उन्होंने आचार्य को दे दिया गुरु दक्षिणा के रूप में.
Text 4.
श्लोक संख्या 4.
After thus giving everything in charity to the Brahmanas, Lord Ramachandra retained only his personal garments and ornaments.
ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे.
And similarly, the queen, Mother Sita, was left with only her nose ring and nothing else.
और इसी तरह रानी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा.
Text number 5.
श्लोक संख्या 5.
All the Brahmas who were engaged in the various activities of the sacrifice were very pleased. Lord Ramachandra.
यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए.
He was greatly affectionate and favorable to the Brahmanas.
क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे.
Thus they, with melted hearts, they returned all the property received from him and spoke as follows.
अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले.
This is rasa. Try to understand.
ये रसा है समझने का प्रयास कीजिए.
Rasa does not just mean Krishna dancing with the gopis. That is the lowest grade neophyte understanding.
रस का अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं. बस यही रास है. ये सबसे निम्नतम सोच है.
Rasa means the exchange between the Lord and the devotees. All kinds.
रसा का अर्थ है भगवान और उनके भक्तों के बीच में आदान प्रदान हर प्रकार के भक्त.
Just like Mother Yashoda, she has got maternal rasa with Krishna.
जैसे कि माता यशोदा का वात्सल्य रस है कृष्ण के साथ.
Vasudev has paternal rasa with Krishna.
वसुदेव का भी वात्सल्य रस है.
Krishna's coward boyfriends have sakya or friendship relationship.
और भगवान कृष्ण के जितने मित्र हैं उनका साख्य रस है.
Of course the gopis have madhurya or loving.
और गोपियों का माधुर्य रस.
Affairs of conjugal.
तो उनका जो माधुर्य भाव में जो स्थित रस है आदान प्रदान.
But all the other rasas are also rasa.
परंतु इसके अलावा जितने रस हैं वो भी रस हैं.
So here we see that the rasa between the Lord and the Brahmanas is that they received all these gifts. He literally gave away his entire kingdom. Thank you.
तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान राम और उनके ब्राह्मणों के बीच में किस प्रकार का आदान प्रदान हुआ.
So this is Atmanivedana.
तो ये आत्मनिवेदनम है.
How many of you know Atmanivedanam?
आप में से कितनों को आत्मनिवेदनम का अर्थ पता है?
Yellow boys and recent yellow boys. Atmanivedana means those who give up everything.
Atmanivedan ka arth hai jo sarvasv tyag kar dete hain.
Specifically for the pleasure of the Lord.
Bhagwan ke prasanta ke liye.
Total surrender.
Purn sharanagati.
The acharya for Atmanivedana is Bali Maharaj.
और जो आचार्य है आत्मनिवेदन के वो है बलि महाराज.
He was emperor not just of one kingdom or one planet.
वो सिर्फ एक राज्य के राजा नहीं थे या एक पूरे लोक के राजा नहीं थे.
He had stolen the higher planets, all the kingdom of the devas, Indra, everybody had ousted. He had stolen all of that. He was emperor of the higher Bhurbhuvasva, upper, middle, lower planetary system, and the whole show. Bali Maharaj stole it all, and he was emperor. He did a job, a good job as emperor also.
देवताओं को पराजित करके वो तीनों लोकों के राजा थे भूर भुव स्वः और बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य कर रहे थे राज्य कर रहे थे पूरे ब्रह्मांड के
but was he stolen? He stole it. He
stole it.
Stole it.
हाँ और उन्होंने चोरी किया वो राज्य
didn't belong to him. That's why the devas prayed to Lord Vishnu, my dear Lord, you kindly intervene. They were Sakama devotees. So when they lose their kingdoms, when the demons oust them and they have to live in the clouds for a while, they don't like it.
तो इसलिए जितने देवता थे उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की क्योंकि वो सकाम भक्त हैं तो उनको पसंद नहीं है कि राज्य के बिना बादलों के पीछे छुप छुप के रहना.
If I told you, Prabhu, you have to leave the ashram and live in the clouds for a while.
अगर महाराज कह रहे हैं प्रभु मैं आपको बोलूं आपको आश्रम छोड़ के बादल में रहना है
would you like that?
कि आपको पसंद
होगा? Not really. So the devas don't like it.
तो ऐसे देवताओं को भी पसंद
नहीं. They're forced. They can't because Bali Maharaj and the same thing. Hiranyakashipu stole everything. Hanurakshak stole everything. This is demoniac. Aham Ishwara. I am the controller. Aham Bogi. I am the enjoyer.
उनको बलपूर्वक अपने राज्य देना पड़ा. बलि महाराज ने उनको उस पे उसको छीन लिया उनसे जैसे हिरण्यकशिपु ने भी छीना. तो उनकी मानसिकता यही होती है अहम भोगी.
आत्मनिवेदनम
का अर्थ है अपना सर्वस्व भगवान को दे देना.
Having been the emperor of the entire universe under the instruction not of Shukracharya, his guru was Shukracharya.
पूरे ब्रह्मांड के राजा होने के बाद
and Shukracharya told him no this little boy, this Brahmana, don't be fooled. He's Lord Vishnu himself.
तो जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य उन्हें मना कर रहे थे कि अपना इनको ये तीन पग जमीन देने के लिए तुम सहमत मत हो. तुम्हें लग रहा है छोटा बालक है परंतु स्वयं भगवान विष्णु है.
दुर्वासा was a little crooked.
दुर्वासा और शुक्राचार्य.
दुर्वासा मुनि was a little crooked, but he's still alive most probably on higher planets. दुर्वासा.
तो जो दुर्वासा मुनि है थोड़े से क्रूकेड है परंतु फिर भी अभी ऊपर के लोगों में रह रहे हैं.
So he, but he was also very intelligent. There's a lot of crooked people in this world that can also be intelligent.
परंतु वो बहुत बुद्धिमान भी थे.
So he knew what the situation was, and he knew who the Brahmin boy was.
तो जानते थे कि क्या परिस्थिति है और वो जानते थे कि ये जो बालक आया है ये इसकी वास्तविकता क्या है.
He knew that the Brahmin boy was Lord Vishnu in disguise. He knew that.
वो जानते थे कि ये भगवान विष्णु है जो एक बोने का रूप लेके आए हैं.
So he warned Bali Maharaj, no, don't give him these steps of lands he's asking for. Don't give.
तो उन्होंने बलि महाराज को मना किया कि नहीं इनको मत दीजिए.
He is Lord Vishnu himself.
ये स्वयं भगवान विष्णु हैं.
With the first step he will take half the universe.
पहले कदम में आधा ब्रह्मांड ले लेंगे.
And with the second step he'll take the other half of the universe.
दूसरे कदम में बाकी का ब्रह्मांड ले लेंगे.
And then what you gonna do for the third step?
तो और तीसरे कदम के लिए तुम क्या करोगे?
You'll be guilty of committing the sin of lying to a brahmana.
और तुम्हें पाप लगेगा कि ब्राह्मण से झूठ बोलने का.
As it turned out there were problems regarding the third step.
क्योंकि तुमने तीन पग भूमि का वादा किया है वो तुम वादा कैसे पूरा करोगे यानी तुमने झूठ बोला.
He offered his forehead as the third step.
उन्होंने अपना मस्तक समर्पित किया तीसरे कदम में.
But at first the Lord was not fully satisfied.
परंतु भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए.
But he demonstrated atma nivedana. He gave up everything, even disregarding the advice of Shukracharya. He gave up everything and surrendered to the Lord. That's atma nivedana.
तो शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी उन्होंने सर्वस्व भगवान विष्णु को समर्पित किया तभी उन्हें आत्मनिवेदन का आचार्य बताया गया.
So as the ideal king, the Lord gave everything back. That is, he had given everything away to the Brahmanas and they gave it back to him, Atmanivedana.
तो एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने सब कुछ ब्राह्मण को दान में दे दिया और ब्राह्मणों ने भी आत्मनिवेदन करते हुए पूर्ण समर्पित करते हुए वो सब चीजें वापस लौटा दी भगवान.
So then you could say, it's fair to say the whole kingdom was prasadam.
तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा राज्य प्रसाद बन गया.
It was enjoyed by the Lord and then gifted to the brahmanas and they gave it back.
कि जो भगवान के द्वारा भोग किया हुआ ब्राह्मणों को दिया हुआ ब्राह्मणों ने वापस उपहार में भगवान को दे दिया.
So purport by Srila Prabhupada.
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा.
In the previous chapter, it was said that the prajas, the citizens, strictly followed the system of Varnashram Dharma. Text 5 purport.
तात्पर्य पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि प्रजा दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करती थी.
The brahmanas acted exactly like brahmanas, the kshatriyas exactly like kshatriyas, and so on.
ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की भांति ठीक तरह से कर्म करते थे और क्षत्रिय जन बिल्कुल क्षत्रियों की तरह इत्यादि.
Therefore, when Lord Ramachandra gave everything in charity to the brahmanas being qualified, wisely considered that brahmanas are not meant to possess property to make a profit from it.
अतएव जब भगवान रामचंद्र ने ब्राह्मणों को दान में अपना सर्वस्व दे डाला तो योग्य तथा चतुर ब्राह्मणों ने विचार किया.
Indirectly, Prabhupada is criticizing modern Hindu priests.
अप्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद आज के आधुनिक ब्राह्मणों पर टीका दे रहे हैं.
Because sometimes they become greedy after money is one of the reasons why the state government took over the Balaji temple in South India, because the brahmanas were misusing their position and they were just, I had personal experience where they just seeing my western body, they presumed I was wealthy.
तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपनी पदवी का गलत उपयोग कर रहे हैं और यही एक मुख्य कारण है कि दक्षिण भारत में बालाजी मंदिर जो है वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया. महाराज कह रहे हैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैं पाश्चात्य देश के शरीर में हूँ तो भाई जब मैं वहाँ गया ब्राह्मणों को लगा कि मैं बहुत धनी होऊंगा.
So they were taking me around the complex inside the temple.
तो वो मेरे को मंदिर घुमा रहे थे.
And showing me this sacred thing and that sacred thing.
और वहाँ की पवित्र जितनी चीजें हैं उनसे अनुगमन करा रहे थे.
They didn't speak English, but they were showing me different things.
तो पूर्ण अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे परंतु मेरे को अलग अलग जगह दिखा रहे थे.
For each sacred thing, they showed me expected 500 rupees.
तो हर स्थान दिखाने के लिए उनकी अपेक्षा थी मैं उन्हें 500 रुपए दूँ.
This is not Brahmana.
ये ब्राह्मण टेल
करता है. The opposite of what is described in this verse. This loba.
जो इस श्लोक में विवरण किया गया उसके बिल्कुल विपरीत ये लोभ है.
Greed.
लालच.
This is Kaliyuga nonsense.
ये कलयुग की बकवास है.
When the brahmanas become greedy,
जब ब्राह्मण लालची बन जाते हैं,
means all auspicious, inauspicious must be there.
तो इसका अर्थ है अशुभ चीजें वहाँ होंगी.
Now sometimes people misunderstand.
कभी कभार लोग गलत समझते हैं.
They think that ISKCON is greedy for money.
कभी कभार लोग सोचते हैं कि ISKCON मंदिर पैसे के लिए बहुत लोभी है.
But they can't understand the simple point. The money we receive, the vast majority of it is used in the service of the Lord.
वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाते कि जितना भी हम धन है वो भगवान की सेवा में ही उपयोग करते हैं.
You can see that the deities are dressed very nicely. They're fed very nicely 6 times a day.
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अश्वविग्रहों का श्रृंगार कितना सुंदर किया हुआ है. रोज 6 बार भोग लगता है एक दिन में.
Deity dresses are costly. They're not cheap.
जो भगवान की पोशाकें हैं वो बहुत महंगी हैं, सस्ती नहीं.
To maintain the temple campus is very expensive.
सिर्फ मंदिर को मेंटेन करने के लिए बहुत इस पे खर्चा आता है.
From time to time, a major remodeling has to be done.
समय समय के साथ बहुत सारी चीजें दोबारा से मॉडल करनी पड़ती हैं.
For example, in the temple room, you see how it's decorated with the columns and the ceiling, everything decorated.
आप देख सकते हैं इस मंदिर कक्ष के अंदर ही किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है.
Every 5 years or so, it has to be repainted. It's very costly.
हर 4-5 साल बाद इसका दोबारा पेंट करना होता है. तो इसमें सब में धन जाता है.
It's for the pleasure of the deities.
ये भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल होता है.
And resultantly, it's for your pleasure also.
और उसके फलस्वरूप आप सबके आनंद के लिए.
Makes it a beautiful place, so you can come and become purified.
जिससे कि ये स्थान एक सुंदर स्थान बने, आप सब यहाँ पर आएं और शुद्ध हों.
That's where the money goes.
तो इस प्रकार से धन का इस्तेमाल होता है.
So this concept has to be understood. The same concept as the Brahmanas gave it back to Lord Ramachandra, but they were not greedy.
इस सिद्धांत को समझना चाहिए कि ब्राह्मणों ने कैसे जो ने प्राप्त हुआ वो दोबारा से भगवान को दे दिया.
Brahmanas are not meant to possess property to make a profit from it.
ब्राह्मणों का कर्तव्य ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी लेकर रखें जिससे वो धन कमाएं.
The qualifications of a Brahmana are given in Bhagavad Gita 18:42.
ब्राह्मण के जो योग्यता है गुण है वो भगवत गीता 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में दिए गए हैं.
शमो दमस्तप शौचम शत्रु अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम अश्चिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावैजम. पीसफुलनेस सेल्फ कंट्रोल ऑस्टेरिटी purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge, and religiousness, these are the qualities by which the Brahmanas work.
तो वो गुण इस प्रकार हैं, शांत स्वभाव, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमता तथा धार्मिकता, ये गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं.
The Brahmanical character offers no scope for possessing land and ruling citizens.
ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने तथा प्रजा पर शासन करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है.
These are the duties of kshatriya.
ये तो क्षत्रियों के कर्म हैं.
But we have to consider, all right, well, what about the present time, modern times?
हमें आधुनिक संदर्भ में इस बात को समझना चाहिए.
We don't have any purest kshatriyas.
हमारे पास आज के समय में कोई शुद्ध क्षत्रिय भी नहीं है.
In the future, long after all of us are dead, there will be the Kshatriya order in ISKCON. In the future, but we'll all be dead by the time this is established because it's very difficult to create pure Kshatriyas. It's not an easy thing.
तो आप भविष्य में देखेंगे ISKCON में जो शुद्ध क्षत्रिय हैं वो प्रबंध संभालेंगे. अभी नहीं होगा परंतु भविष्य में होगा. और एक शुद्ध क्षत्रिय का निर्माण करना सरल नहीं है.
My personal feeling is that there, in order to fulfill Srila Prabhupada's desire that there should be kshatriyas in our society, they should have to undergo 4 years of training just like university before they're given a diploma of graduation proving that they know what it means to be a kshatriya.
तो महाराज कह रहे हैं मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है जो समझ है कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपने समाज में क्षत्रिय भी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार का उनका प्रशिक्षण होगा कि कम से कम 4 साल वो उनका कड़ा प्रशिक्षण हो उसके बाद इनको सर्टिफिकेट मिले.
So training in both aspects of kshatriya, namely administration and military.
क्षत्रिय का दोनों प्रकार के प्रबंध से संबंधित कर्तव्य और मिलिट्री से रिलेटेड.
इन द फ्यूचर आवर सोसाइटी विल हैव इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रेनिंग एंड सर्टिफाइंग क्षत्रियस सो दैट दे मस्ट एक्ट विद इन द लॉज ऑफ धर्मा एंड मस्ट एक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द ब्राह्मणस. दैट विल कम इन द फ्यूचर. इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम.
तो भविष्य में आप देखेंगे कि हमारे संस्था से इस प्रकार के और संस्था निर्मित होंगे जो क्षत्रियों को प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और ब्राह्मणों का सम्मान करके उनसे निर्देश प्राप्त करने चाहिए.
So, Prabhupada says the Brahminical culture offers no scope for possessing land and ruling citizens.
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने तथा प्रजा पर शासन करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है.
Somebody may say, well, what about ISKCON, the institution?
तो आप पूछ सकते हैं ISKCON के बारे में क्या जो एक संस्था है.
Isn't this Brahmanas owning bank accounts, automobiles, real estate? Isn't that a violation of the concept? Some of a doubtful person may think like that. And they do. There are those who are not friends of ISKCON who think like that. The devotees are greedy, they think.
और तो क्या जो बैंक अकाउंट होना संस्था का यहाँ पे आप देखते हैं गाड़ियाँ हैं प्रॉपर्टी है तो क्या वो इस सिद्धांत के विपरीत है. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं विशेषकर जो ISKCON के मित्र नहीं हैं उन्हें लगता है कि जो भक्त लोग हैं वो बहुत ही अलोभी हैं.
But that is not the correct conception because We've got many senior devotees at this temple, for example.
परंतु ये सही समझ नहीं है. उदाहरण के लिए आप देखेंगे इस मंदिर में बहुत से वरिष्ठ भक्त हैं.
They're honest.
जो पूर्ण ईमानदार हैं.
They do not feel they own even one paisa of the money. It costs lakhs and lakhs to run this place. They don't feel that they own even one paisa of that money. They know it belongs to Krishna, and we are just play a managerial role. That's the end of it. We are not the owner and possessor.
जिन्हें लगता है कि हमारा एक पैसा भी मुझे मैं उसका मालिक नहीं हूँ. जितनी हालांकि लाखों लाखों रुपए आ रहा है वो सब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए और मेरे लिए उसमें से एक पैसा भी नहीं है.
So in that respect, our temples are carrying out the role, brahminical role, because we know it belongs to Krishna and it belongs to Srila Prabhupada also.
So इस प्रकार से ब्राह्मणों की भूमिका निभाई जाती है कि जितना भी property धन है वो भगवान कृष्ण का है और श्रील प्रभुपाद का है.
When Srila Prabhupada was on the planet, he had hundreds of millions of dollars of value of real estate at his disposal.
जब श्रील प्रभुपाद इस लोक पर थे तो real estate जितना property था उसमें लाखों डॉलर उनके पास
था. Hundreds of thousands of dollars of vehicles at his disposal.
और सभी मंदिरों के गाड़ियों को मिला दें तो बहुत सी गाड़ियाँ थी.
Millions of dollars in the bank accounts.
लाखों डॉलर बैंक अकाउंट में थे.
But he never claimed one paisa. Not one paisa that he ever considered to be his own.
परंतु उन सब में से भी एक पैसा को भी वो अपने खुद का लिए नहीं कहते थे.
So we follow in that example. We don't claim to be the owner of the opulence that is supplied by Krishna and the goddess of fortune.
तो हम इसी उदाहरण का पालन करते हैं कि जितना जो ऐश्वर्य भगवान कृष्ण हमें देते हैं उस पे हमारा कोई हक नहीं है.
So Prabhupada continues, although the Brahmanas did not refuse Lord Ramachandra's gift, after accepting it, they returned it to the king.
अतः भले ही ब्राह्मणों ने भगवान रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार ना किया हो, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे राजा को लौटा दिया.
The Brahmanas were so pleased with Lord Ramachandra's affection toward them that their hearts melted.
ब्राह्मण समुदाय अपने प्रति भगवान के वात्सल्य से इतना प्रसन्न थे कि उनका हृदय द्रवित हो उठे.
They saw that the Lord Ramachandra, aside from being the supreme personality of Godhead, was fully qualified as a kshatriya and was exemplary in character.
उन्होंने देखा कि श्री राम भगवान होने के अतिरिक्त योग्य क्षत्रिय थे और उनका चरित्र आदर्श था.
One of the qualifications of a kshatriya is to be charitable.
क्षत्रिय का एक गुण है दानशीलता.
Upon the independence of India, there was a great tragedy.
भारत की स्वतंत्रता के समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना.
Under the British, the Rajas were permitted to continue with their kingdoms.
Sorry?
The Rajas, the kings, they were permitted to continue managing their kingdoms under the British. Up to a point, of course, the British had control of everything, but the point is, they didn't interfere with the Rajas very much.
तो हम देखते हैं उस समय जो अलग-अलग राज्यों के राजा थे उनको अनुमति थी कि वो राज्य करते रहे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत.
So the common people who had need used to be able to approach the queen.
जिससे आम साधारण आम व्यक्ति को कुछ चाहिए होता था उसको क्वीन के पास जाना पड़ता था.
Ask for help with some kind of crisis, maybe a medical crisis or any kind of crisis, financial crisis. This is a Vedic system. They used to be able to go and beg from the queen or king.
जिससे वो उनको कुछ भी आवश्यकता पड़े तो वो जाकर सहायता मांग सके.
In the old days, there weren't demons like the modern kings and queens that are still on the planet.
उन दिनों में आज के समान इतने असुरिक राजा नहीं थे.
So this was their habit. The queen would give in charity to the common people and help them out.
तो उस समय जो राजा रानी होती थी वो दान दिया करती थी लोगों को जब उनका आवश्यकता पड़ती थी.
After independence, the states seized all of the assets, and when the common people came to the queen and asked for charity, I'm sorry, I don't have control anymore.
तो स्वतंत्रता के बाद स्टेट के पास जितना चीजें थी उसको सरकार ने हड़प ली. और लोग जब जाते थे आवश्यकता मांगते तो ना रानी ने मना कर दिया कि अब मेरा नियंत्रण नहीं है.
It was a breach of proper governmental system.
तो यहाँ
a breach of proper governmental system.
तो इस प्रकार से ठीक नहीं हुआ.
So on one hand, Kshatriyas have the propensity to rule, but on the other hand, they're very liberal with charity.
तो क्षत्रिय शासक प्रजा से जो कर वसूल करता है वह अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता अपितु सुपात्रों को दान देने के लिए करता है.
When Maharaj Yudhishthir gave charity, he engaged Karna to take charge of distributing it.
तो दान देने के लिए कर वसूल करता है.
Karna was very famous as Datta Karna.
कर्ण इस विषय में बहुत प्रसिद्ध थे.
The word Datta refers to one who gives charity very liberally.
और वो दान बहुत ही खुले हृदय से देते थे.
The kings always kept a large quantity of food grains in stock.
तो जो राजा लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे.
And whenever there was any scarcity of grains, they would distribute the grains in charity.
और जब भी अकाल पड़ता तो वे अन्न का दान देते थे.
Kshatriya's duty is to give charity. A brahmana's duty is to accept charity.
क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वे दान दें और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान लें.
But not more than to need it than to maintain body and soul together.
किंतु शरीर निर्वाह से अधिक मात्रा में नहीं.
Therefore, when the brahmanas were given so much land by Lord Ramachandra, they returned to him and were not greedy.
अतएव जब भगवान ने ब्राह्मणों को इतनी अधिक भूमि दान में दे दी, तो उन्होंने उसे लौटा दिया.
We'll stop there. Anybody have any questions?
क्योंकि वे लालची नहीं थे, तो हम यहीं पर विराम देंगे. किसी का कोई प्रश्न है?
So you have a glimpse into the purpose of this movement. How Devi Manasra means that Kshatriyas will be restored after proper certification and training.
तो आपने देखा कि इस आंदोलन में एक आपको झलक मिली कि इसका कितना विशाल लक्ष्य है.
There will be both administrators and warrior class both. Aspects of Kshatriya will be there.
तो जो क्षत्रिय के दोनों कर्तव्य हैं, प्रबंध से संबंधित भी और धर्म से संबंधित.
And they will surrender to advice from the learned brahmanas who maintain the laws of dharma.
जो योग्य ब्राह्मण हैं, जो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, उनके वो शरणागत रहे.
Thank you very much. Jagat Guru Sri Baba Ki Jai. Kanatala Shiva Bhagavatam Ki Jai. Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol.
Zulans Bhakti Madhuri Govind Swami Maharaj Ki. आज दोपहर में एक बड़ा कार्यक्रम है महामिलन का नथा सिंह वाटिका में, जिसके लिए 300 रुपीस रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं, जिसमें पूरा समुदाय इकट्ठा हो रहा है. अलग अलग गेम्स हैं, प्रसाद है, प्रवचन है, टैलेंट हंट प्रोग्राम है. तो जो भी इसमें भाग लेना चाहें आप आमंत्रित हैं. हरे कृष्ण. 3:30 बजे, 3:30 बजे मॉडर्न बाजार जो पास में है वहाँ से बच्चों के द्वारा आयोजित रथ यात्रा है, वो शुरुआत होगी मॉडर्न बाजार से नत्था सिंह वाटिका और फिर